पृष्ठ संख्या 106, अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक अफ्रीका में कोई 50 राज्य कायम हो चुके थे और सिवाय लाइबेरिया तथा इथियोपिया के इनमें से सब के सब किसी न किसी यूरोपीय उपनिवेशवादी देश के शासन के अधीन थे। यद्यपि राष्ट्रवाद की भावना सर्वत्र जागृत हो गई थी, तथापि अलग-अलग देशों के राजनीतिक संघर्षों का स्तर अलग-अलग था। कुल मिलाकर कहे तो दो युद्धों के बीच अफ्रीकी जनता के संघर्ष का रूप बदल गया था। अब वैसे विद्रोह नहीं हो रहे थे जैसे औपनिवेशिक शासन के आरंभिक दौर में देखने को मिलते थे। सतही तौर पर तो लगता था कि उपनिवेशवाद अफ्रीका में भली भांति प्रतिष्ठित हो गया है और उस औपनिवेशिक शासन की अस्थिरता देखकर कुछ लोगों ने इस काल को अफ्रीका में उपनिवेशवाद का स्वर्णिम युग कहा। लेकिन यह अस्थिरता उतनी वास्तविक नहीं थी जितनी लगती थी, क्योंकि नई उपनिवेश विरोधी शक्तियां पहले से ही उभरने लगी थी। उत्तर अफ्रीका के कुछ देशों में इस काल में प्रबल राष्ट्रीय आंदोलनों तथा संघर्षों का उदय हुआ। अन्य देशों में, जिनमें दक्षिणी अफ्रीका के भी अधिकतर देश शामिल थे, इस काल में आधुनिक राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन का जन्म हुआ। मिस्र, उत्तर अफ्रीका के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक आंदोलन का उदय मिस्र में हुआ। 1918 में वफद नामक एक संगठन की स्थापना की गई जिसने मिस्र के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान किया। मिस्र राष्ट्रवादियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वतंत्रता की मांग करने के लिए पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयारी कर ली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस मंत्री एवं प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और वफद के नेता साद जगलूल पाशा को देश से निष्कासित कर दिया। इससे मिस्र में विद्रोह भड़क उठा जिसे दबा दिया गया, लेकिन ब्रिटेन विरोधी उपद्रव होते रहे और 1922 में ब्रिटिश सरकार को मिस्र पर अपने संरक्षित्व प्रोटेक्टोरेट को छोड़ना पड़ा। अहमद पुआद को स्वतंत्र मिस्र राज्य का राजा बनाया गया। 1923 में एक संविधान लागू किया गया जिसके तहत मिस्र को संसदीय शासन प्रणाली प्रदान की गई, लेकिन मिस्र तथा नहर को सुरक्षा देने तथा सूडान पर ब्रिटिश शासन कायम रखने के नाम पर ब्रिटिश फौज मिस्र में बनी रही। कहने भर को सूडान संयुक्त आंग्ल मिस्री नियंत्रण में था। संसदीय चुनावों में जगलूल पाशा की वफद पार्टी ने भारी विजय प्राप्त की और सरकार बनाई। उसकी सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। मिस्र के राजा ने संसद भंग कर दी, लेकिन जब भी चुनाव हुए वफद पार्टी पहले की तरह हर बार भारी विजय प्राप्त करती रही। अंग्रेजों के उकसाने पर राजा हर बार संसद को भंग करता रहा, यहाँ तक कि 6 सालों में यह काम उसने 4 बार किया। जगलूल पाशा की मृत्यु के बाद नहास पाशा वफद पार्टी का नेता बना। यह पार्टी ब्रिटेन विरोधी नीति का पालन करती रही। 1930 में एक नए संविधान की घोषणा की गई जिसमें राजा के अधिकार बढ़ा दिए गए और संसद के अधिकार कम कर दिए गए। चारों ओर जबरदस्त जनविरोध हुआ। फलतः 1935 में 1923 के संविधान को भी लागू करना पड़ा। 1936 में आयोजित चुनावों में वफद पार्टी फिर सत्ता में आ गई। यह राष्ट्रवादी शक्तियों की भारी जीत थी। नई सरकार ने ब्रिटेन के साथ एक संधि की जिसके अनुसार मिस्र पर ब्रिटिश कब्जा समाप्त तो हो गया, लेकिन ब्रिटेन को स्वेज नहर क्षेत्र में 10,000 सैनिक रखने की इजाज़त दे दी गई। मिस्र में ब्रिटिश फौज का इस सीमित संख्या में भी कायम रहना कुछ साल बाद मिस्र और ब्रिटेन के बीच एक बड़े झगड़े का कारण बना। मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को में भी प्रबल राष्ट्रवादी आंदोलन उठे। 1921 में स्पेनी मोरक्को के रिफ काबिले ने अब्दुल करीम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उन्होंने स्पेनी सेना को गहरी शिकस्त दी और रिफियाई गणतांत्रिक राष्ट्र रिफियन रिपब्लिक नेशन की घोषणा कर दी। इस पर शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को भी मुंह की खानी पड़ी। अंत में फ्रांस और स्पेन ने 4 लाख सैनिकों की एक विशाल फौज के साथ संयुक्त रूप से आक्रमण किया। अब्दुल करीम के मुट्ठी भर सैनिक इसका सामना करने में असमर्थ रहे और करीम ने मई 1926 में आत्मसमर्पण कर दिया। 1927 तक स्पेन और फ्रांस मोरक्को में अपने अपने प्रदेशों के फिर से मालिक बन बैठे, लेकिन रिफ विद्रोह ने पूरे अफ्रीका में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। रिफियाई गणतांत्रिक के खिलाफ फ्रांसीसियों की लड़ाई के दौर में फ्रांस के बहुत से लोगों ने, खासकर वहाँ के साम्यवादी दल और श्रमिक संघों ने, रिफियाइयों को अपना भरपूर समर्थन दिया। 12 अक्टूबर 1925 को फ्रांसीसी श्रमिकों ने मोरक्को में फ्रांसीसी नीति के विरुद्ध हड़ताल और प्रदर्शन किए। उन्होंने अल्जीरिया और ट्यूनीशिया की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। दक्षिण अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रसार आसमान रूप से हुआ। औपनिवेशिक शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में जो राज्य स्थापित किए थे उनमें से अधिकांश नए नए थे, और इन राज्यों में जो लोग रहते थे जरूरी तौर पर किसी समान अतीत में साझेदार नहीं थे। इसलिए इन राज्यों के लोगों को अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने में कुछ समय बाद यह स्थिति अधिकतर एशियाई देशों की स्थिति से या उसके पूर्व यूरोपीय देशों की हालत से भिन्न थी। इन देशों के लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना का उदय दो युद्धों के बीच के काल की एक बड़ी घटना है। किसानों, श्रमिकों, बुद्धिजीवियों एवं अन्य वर्गों की असुविधाओं और असंतोष के फलस्वरूप हर देश में श्रमिक संघों तथा अन्य प्रकार के संगठनों की स्थापना हुई। अनिवार्यतः इन संगठनों का राजनीतिक चरित्र उपनिवेशवाद विरोधी था, क्योंकि उनकी सारी शिकायतों की जड़ मौजूदा औपनिवेशिक शासन था। राजनीतिक जागृति पैदा करने और राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन स्थापित करने में बुद्धिजीवियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में शैक्षिक सुविधाएं बहुत सीमित थी। यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा को भी औपनिवेशिक शासन के अस्तित्व के लिए खतरनाक माना जाता था। बहुत से अफ्रीकी इतिहासकारों का विचार है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अनुभवों को देखते हुए यूरोपीय औपनिवेशिक शासकों ने अफ्रीका में शिक्षा को जानबूझकर निम्न स्तर का रखा। भारत में शिक्षित लोगों की एक बड़ी संख्या ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन संगठित कर लिया था। फिर भी कुछ अफ्रीकियों को तो शिक्षित किया ही गया, क्योंकि औपनिवेशिक शासन सिर्फ मूल औपनिवेशिक देशों से लाए गए लोगों के बल पर नहीं किया या चलाया जा सकता था। शिक्षित अफ्रीकियों से बहुत को औपनिवेशिक प्रशासन में खपा लिया गया था। उन्होंने औपनिवेशिक शासकों के द्वारा अपने खिलाफ बरते जा रहे भेदभाव को शिद्दत से महसूस किया और अपने लोगों के शोषण के प्रति उनमें अधिकाधिक जागरूकता आई। उनमें से बहुत से लोग उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में, खास तौर से ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य में गए, और वहाँ उनका संपर्क क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों तथा आंदोलन से हुआ। कीनिया के जोमो केन्याटा, नाइजीरिया के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले नामदी अजिकिवो, गोल्ड कोस्ट घाना के एनक्रूमा और सेनेगल के लियोपोल्ड सेंगोर अफ्रीका के उन भावी नेताओं में से थे जिन्होंने अपने प्रवास के दौरान पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली थी। 1920 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न देशों में कई संगठन स्थापित किए गए। जिन देशों में कुछ प्रतिनिधिक संस्थाएं स्थापित की गई थी उनमें बाद में नियमित राजनीतिक दल स्थापित हो सके। उदाहरण के लिए नाइजीरिया में संवैधानिक सुधार लागू हो जाने के बाद वहाँ राष्ट्रीय लोकतंत्र दल, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी गठित किया गया। इस काल में जो संगठन स्थापित किए गए उनमें से कुछ के नाम सिर्फ इस प्रकार है: युवा किकुयू संघ, यंग किकुयू एसोसिएशन, गोल्ड कोस्ट युवा सम्मेलन, गोल्ड कोस्ट यूथ कॉन्फ्रेंस, अधिकार तथा नागरिकता संघ, लीग ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजनशिप और अंगोला की अफ्रीकी लीग लीगा अफ्रीकाना, अखिल अफ्रीकी कांग्रेस। इस काल में अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के उदय में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा आंदोलनों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। इनमें से बहुत से आंदोलनों का सूत्रपात अमेरिका में काले लोगों की समानता प्राप्ति के लिए किए जा रहे संघर्ष के नेताओं ने किया। कुछ का मूल कैरेबियन क्षेत्र के फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशों के काले लोगों में था। इन आंदोलनों की एक सर्वसामान्य विशेषता यह थी कि ये सभी काले लोगों की एकता और भ्रातृत्व की हिमायत करते थे। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अखिल अफ्रीकी कांग्रेस पैन अफ्रीकन कांग्रेस थी। इसका संयोजन WEB डू बॉइस ने किया था। अमेरिका में अश्वेत लोगों को तरक्की के लिए राष्ट्रीय संघ नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की स्थापना में इस नेता की भूमिका की चर्चा हम कर चुके हैं। डू बॉइस ने पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान 1919 में पहली अखिल अफ्रीकी कांग्रेस का अधिवेशन पेरिस में आयोजित किया। कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके संयुक्त राज्य तथा दुनिया के अन्य हिस्सों के काले लोगों के लिए समान राजनीतिक अधिकारों और अफ्रीकी लोगों के लिए आत्मनिर्णय के हक की मांग की। इसके बाद 1921, 23 तथा 27 में यूरोप के विभिन्न राजधानी नगरों में अखिल अफ्रीकी कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिनमें अफ्रीकी संयुक्त राज्य और कैरेबियन क्षेत्र के काले बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए। एक अन्य अखिल अफ्रीकावादी आंदोलन का प्रवर्तन मार्क्स गार्वे ने किया, जिसका जन्म जमैका में हुआ था। 1914 में उसने विश्व निग्रो उत्थान संघ यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसने काले अमेरिकियों को देशांतरण करके अफ्रीका चले जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया। हर देश के काले लोगों में स्वाभिमान का भाव जगाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेग्रीट्यूड आंदोलन 1920 और 1930 के वाले दशकों में एक सांस्कृतिक आंदोलन भी उभरा। उससे काले लोगों में अपनी पृथक पहचान और स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ और गोरों के वर्चस्व तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व को अस्वीकार करने की वृत्ति पैदा हुई। यह नेग्रीट्यूड आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। काले लोगों की अपनी संस्कृति में आस्था, अफ्रीकी कला तथा संस्कृति के सौंदर्य का अभिमान एवं सभी अफ्रीकियों तथा अफ्रीकी मूल के लोगों की एक सम्मिलित सांस्कृतिक विरासत में विश्वास जैसे तत्व का इस आंदोलन के आधार थे। कैरेबियन क्षेत्र के मार्टिनिक फ्रांसीसी उपनिवेश का निवासी अमे सीजीर, सीनेगल का लयोपोल्ड सेंगोर और संयुक्त राज्य का लैंगस्टन हयूज इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में से थे। ये तीनों विख्यात कवि थे, पहले तो फ्रांसीसी भाषा के और हयूज अंग्रेजी का। जमायकाई मूल का स्क्वाड मेक्के एक अन्य कवि था, जिसने काले लोगों को अपने सामान्य कष्टों के निवारण तथा अपने सम्मान को प्रतिष्ठित करने के लिए उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। यूरोपीय मूल के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में से अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा मिला। 1927 में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई, जिसमें साम्राज्यवाद विरोधी लीग लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की स्थापना की गई। इस कांग्रेस में भाग लेने वालों में यूरोप के वामपक्षी आंदोलनों ने नेता और आमूल परिवर्तन की हिमायत करने वाले बुद्धिजीवी तथा औपनिवेशिक शासन के अधीनस्थ एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। अफ्रीकी देशों में से मिस्र, कीनिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि आए थे। जोमो केन्याटा और लागुमा इनमें से प्रमुख नाम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद जुल्म दो युद्धों के बीच के काल में दक्षिण अफ्रीका के नस्लवाद जुल्मों में और भी तीव्रता आ गई थी, लेकिन साथ ही उसके विरुद्ध चलने वाले संघर्ष में भी और प्रखरता आई। 1910 में नेटाल तथा केप कॉलोनी के ब्रिटिश उपनिवेशों और ऑरेंज की फ्री स्टेट तथा ट्रांसवाल के बोअर राज्यों को मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्वशासी राज्य बना दिया गया था, जिसका नाम दक्षिण अफ्रीका संघ यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीका में गोरों की आबादी लगभग 18 लाख थी, जो वहाँ की कुल आबादी का कोई 20% बैठती थी। गोरों में ब्रिटिश मूल तथा बोअर कहे जाने वाले डच मूल के लोग शामिल थे। बहुसंख्यक अफ्रीकी लोग थे, कोई 2 लाख लोग एशियाई, मुख्यतः भारतीय मूल के थे। सरकार पूरी तरह से गोरों के हाथों में थी। गांधी जी ने भारतीयों के खिलाफ किए जाने वाले नस्लवादी भेदभाव के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया था। 1912 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद जुल्मों के खिलाफ भविष्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाला था। 1921 में दक्षिण अफ्रीका के साम्यवादी दल की स्थापना की गई। नेशनलिस्ट पार्टी में, जो कि मुख्य रूप से बोअरों या अफ्रीकनर्स की पार्टी थी, उग्र गोरे नस्लवादी विचारों का बोलबाला था। गोरों की सामाजिक तथा राजनीतिक सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए यह दल रंगभेद की नीति की हिमायत करता था। उनका कहना था कि गोरों को कालों से खतरा है। 1920 वाले दशक से रंगभेद की नीति के हिमायती गोरे शासकों ने ऐसे कानून बनाए जिनके बल पर काले लोगों को कौशलपूर्ण कार्यों या ऐसे ही कार्यों का प्रशिक्षण पाने से अलग रखा गया, और जहाँ गोरे लोग रहते थे उन इलाकों में उन्हें बसने भी नहीं दिया गया। अच्छी जमीनें उनसे पहले ही ले ली गई थी। उनसे कबीलाई क्षेत्र कहे जाने वाले इलाकों में जाकर बसने को कहा गया। उन्हें नगरों में या गोरे लोगों के कामों या फॉर्मों में काम करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। वे शहरों में जाते थे तो उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके प्रमाण के तौर पर साथ में पहचान पत्र या पास रखना पड़ता था। अगर उनके पास यह नहीं होता था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन्हें शहरों में सिर्फ उन्हीं इलाकों में सर्वथा दयनीय स्थिति में रहना पड़ता था जो उनके लिए पहले से ही निश्चित कर दिए गए होते थे। गोरे मजदूरों की औसत मजदूरी काले मजदूरों से 10 गुना ज्यादा होती थी। काले लोगों को श्रमिक संघ बनाने या गोरों के संघों में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें मताधिकार तक प्राप्त नहीं था और अपने देश के शासन में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। 1930 वाले दशक में गोरे नस्लवादियों ने जर्मनी की नाजी पार्टी की तर्ज पर फांसीवादी आंदोलन चलाए। नस्लवादी नीतियों के खिलाफ व्यापक असंतोष फैल गया और इस घृणित प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त संघर्ष की तैयारियां होने लगी।